तत्वार्थ सूत्र लेक्चर नंबर 5 स्वामी द्वारा रचित जो तत्वार्थ सूत्र और उसके ऊपर जो टीका मोक्ष शास्त्र नामक है रामजी भाई दोषी जी की, उसके हम पृष्ठ क्रमांक 11 पर आए हैं। यहाँ पर हम
हर एक में अलग अलग पेज है।
यहाँ पर हम गुजराती में कौन सा पेज है भाई?
10 नंबर।
अच्छा, 10 नंबर। वहाँ पर जो सम्यक्त्व की महिमा की बात चल रही है वो देखते हुए मोक्ष पावड़ की गाथा 88 नंबर की, उसका भावार्थ हम देखने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सम्यक्त्व की ऐसी महिमा है कि भूतकाल में जो श्रेष्ठ पुरुष 8 कर्मों का नाश करके मुक्ति को प्राप्त हुए तथा भविष्य में होंगे वे इसी सम्यक्त्व से हुए हैं और होंगे। देखो उनको क्या बताना है, पहले हमने देखा था ये मोक्ष मार्ग का उपाय बताना चाहते थे और यहाँ पर ये बात निश्चित करवाते हैं कि अन्य अन्य कोटेशन देते हुए कि यह जो सम्यक दर्शन है वह मोक्ष मार्ग को शुरुआत कराने वाला तो है, मोक्ष की प्राप्ति भी कराने वाला, इसलिए उस सम्यक्त्व की महिमा यहाँ पर जोर शोर से बता रहे हैं। कह रहे हैं आज तक जितने मुक्त हुए हैं वो इस सम्यक्त्व से ही हुए हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं वो इसी के द्वारा होने वाले हैं। तो जो हमने सुना है और जो बात सत्य है, एक मार्ग हो त्रण काल परमारथनो पंथ, ऐसा कुछ है ना? ऐसे कुछ है ना?
एक
हो परमार्थ परमार्थनो
त्रण काल
परमारथनो पंथ, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। ये बात भी तो क्या कुंदकुंदा आचार्य के द्वारा ही कही गई है, इसलिए 3rd लाइन पढ़ रहा हूँ। अभी आचार्य कहते हैं कि विशेष क्या कहा जाए, संक्षेप में समझना चाहिए कि मुक्ति का प्रधान कारण सम्यक्त्व ही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थों के क्या धर्म होता है, यह सम्यक्त्व धर्म है। धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्म के अंग को सफल करता है। यानी एक दफे सम्यक्त्व की शुरुआत हुई तो आगे जो तप है या जो कोई व्रत वगैरह है वो इसी से शुरुआत होगी। अब यह कहते हैं डैश लिया ऑब्लिक,
तो सम्यक्त्व इसका मतलब भी धर्म हो रहा है, दोनों अलग अलग होते हैं।
हाँ, देखो धर्म की शुरुआत कहो या सम्यक्त्व कहो एक ही है। जो हमने पहले पढ़ा था, देखो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी इसको सम्यक्त्व को कहा था। यहाँ यही बताना चाहते हैं कि धर्म की शुरुआत सम्यक्त्व से होती है। यहाँ सम्यक्त्व में तीनों बातें लेनी है अपने को, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र। और केवल धर्म की आप बात करेंगे तो वह तो चारित्र गुण की ही पर्याय है। ख्याल में आए, कहीं किसी अपेक्षा से कथन होगा, कहीं किसी अपेक्षा से कथन होगा तो हमें ध्यान में रखना। यह सम्यक कहो या धर्म कहो ऐसा है, या दोनों को एकार्थवाची यहां पर बताया है और उसको हम अलग अलग से भी वर्णन कर सकते हैं। कह रहे हैं यह सम्यक कहो या धर्म कहो ऐसा है कि जो सर्व धर्म के अंग को सफल करता है। यह इसका अर्थ है कि धर्म के अन्य अंग भी होंगे, जैसे चतुर्थ गुण स्थान में किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है लेकिन उस वक्त उसको व्रत नहीं होते, ना के अनुव्रत होते हैं ना के सकल व्रत महाव्रत होते हैं। इस अपेक्षा से आगे के जो धर्म के अंग हैं वो इसी से सफल हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या निकला? सम्यक्त्व के बिना व्रत महाव्रत आदि एकड़ा बिना मिंडा छे, गुरुदेव बता रहे थे ना। तो ये क्या है, ये सफल करने वाली बात कब होगी? कि जब पीछे सम्यक तो खड़ा है, नहीं तो कार्यकारी नहीं। अब कहते हैं कि जो निरंतर सम्यक का पालन करते हैं वे धन्य हैं। अभी इनको क्या कहते हैं, सम्यक्त्व की महिमा बतानी है ना। तो जो सम्यक्त्व का पालन करते हैं यानी जो अपने स्वरूप में बारंबार एकाग्र होते हैं वे धन्य हैं। अभी ये मोक्ष पावर की गाथा 89 नंबर की बताना
चाहेंगे।
जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करने वाला सम्यक्त्व है, अभी हम जरा रुकते यहाँ पर, फिर यहाँ हम पिछले अभी अपना जो विषय चल रहा था उसको रिफर करेंगे। तो सम्यक्त्व होगा तो ही मुक्ति प्राप्त तो होगी, ये कंफर्म हो गया ना। तो इसलिए फिर से पढ़ेंगे, जिस पुरुष के मुक्ति को प्राप्त करने वाला सम्यक्त्व है और उस सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया, अतिचार नहीं लगाया, वह पुरुष धन्य है, वही कृतार्थ है, वीर शूर वीर है, वही पंडित है, वही मनुष्य है। और जिसने सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की है वो मनुष्य नहीं है, क्या शूरवीर नहीं है, पंडित नहीं है, अज्ञानी है, क्या कहा? तो हमको अज्ञानी बोलने से तो खराब लगता है, लेकिन तू पंडित नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है, और मनुष्य नहीं है तो क्या है, पायजमा है। हम बोलते ना आदमी है क्या पायजमा, तो यानी अज्ञानी है। देखो यहां तो इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं, देखो उसमें से दो अर्थ निकल रहे हैं मेरे हिसाब से। उस सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया, इसका अर्थ क्या है, एक बार किसी के सम्यक्त्व प्राप्त हुआ तो कायम टिके ऐसी कोई गारंटी नहीं। गुरुदेव तो बार बार बताते थे और सही बताते थे कि पड़वानी बात ज नहीं करो, यानी एक दफे सम्यक्त्व ऐसा दृढ़ता से प्राप्त करो कि पीछे हटने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहे। लेकिन कुंदकुंदा आचार्य क्या कहते, सपने में भी मलिनता आ जाती है। ये अभी हम अपन जो जय धवला का स्वाध्याय करते हैं उसमें तो ऐसी बात लिखी है, भाई मुझे तो ये भी बताना है कि कुंदकुंदा आचार्य स्वयं करणान योग के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने परिक्रम नाम का एक शास्त्र लिखा था जो करणानी पर आधारित है, जिसके रेफरेंस में अनेक आचार्यों ने उनका रेफरेंस दिया है, लेकिन हमारा इतना कम नसीब है कि हमें वो उपलब्ध नहीं है देखने के लिए। अभी कोई पूछता था ये महाबंध के बाद क्या लेने वाले हो, آپ نے پوچھا تھا کیا؟ نہیں, منجو بین
صبح کے,
یہ اب یہ ہوگا یہ ہوگا, اس کے بعد کیا لیں گے تو مہابندر, مہابندر کے بعد کیا لیں گے تو پریکرما بتانا رہ گیا. ارے جب تک پراپت ہوگا بھائی, اپنا نصیب اچھا ہوگا تو نہیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جے دھولاکار نے یہ بات بتائی ہے, کوئی بھی جیو اسنکھیات بار چوتھے گنستان یعنی سمیکتوں سے گرتا ہے, اسنکھیات بار پنچم گنستان سے گرتا ہے. دیکھو یہ تو پریناموں کی وچترتا بتا رہے ہو, اس کا ارتھ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پولیو ہو گیا تو سارے بھارت کے سب کو ہوگا. یہ تو کوئی کوئی ریئر کوئی ایسی بھومیکا ہوتی ہے کسی جیو کی کہ وہ ایسا اتنا, اور آگے تو یہاں تک بتائے کئی بار ہو بھاولنگی سنت ہوئے, چار بار اپشم شرینی چڑھے میکسیمم پاسبل, ایسا جیو ابھی ایکندری میں ہے. بولو. تو یہاں میں یہ بات بتا رہا تھا کہ کندکند آچاریہ بھی لکھتے ہیں وہ, یہ کہ اپنے کو ڈرانے کے لیے نہیں, سجگتا لانے کے لیے کہ بھائی تو اگر سمیکتو کی پراپتی کرے گا تو اس سے تو ساودھان رہنا, ایسا نہیں سمجھنا کہ ہاں ہاں میرے تو کام سب کام ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں, سپنے میں بھی ملین نہیں کیا, یعنی سپنے میں بھی ملین نہیں کیا, یعنی اس نے بہت ساودھانی برتی, اتیچار نہیں لگایا, وہ پرش دھنیہ ہے, وہی جیو دھنیہ ہے. یہ پرش کی بات نہیں بتا رہے, یہ سمیتو کی مہیما گا رہے ہیں. ایسا جو سمیتو ٹکائے رکھتا ہے وہ پرش دھنیہ ہے, وہی کرتارتھ ہے. کرتارتھ کا ارتھ کیا ہے امول بھائی؟ کرت کرتیہ ہے, یعنی کرنے جیسا جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر ڈالا. وہ کیسے ہیں تو ویر ہے, شور ویر ہے. یہ باقی کی بات تو ہم نے پڑھ لی ہے. ابھی بھاوارتھ, لوک میں کچھ دانادی کرتا ہے اسے دھنیہ کہا جاتا ہے, تتھا جو وواہ یجنیادی کرتا ہے اسے کرتارتھ کہا جاتا ہے. ہاں جی, دھنیہ دھنیہ ہونا, جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی ابھی جیسا مان لو ہم نے کل بات کری تھی, کسی کو تین بیٹیاں ہیں, کسی کو دو بیٹیاں ہیں, کسی کو ایک ہے, تو اس کی شادی کرانے سے ہم کرتارتھ ہو گئے, یعنی کرنے جیسے سب کچھ کر دیا, ابھی کچھ نہیں ہم تو سوادھیائے کریں گے. ہاں کرت کرت, تو وہ کرتارتھ ہے, یعنی جو کرنے جیسا ہے وہ پورا ہو گیا, ابھی بس میرے کو کچھ, میری کوئی ابھی اچھا باقی نہیں ہے بس. کیا کہتے ہیں اب, کہتے ہیں کہ جو وواہ کرنے سے سوئم کو کرتارتھ مانتا ہے, دوسرے کا وواہ کرانے سے کرتارتھ مانتا ہے, یجنیادی کرتا ہے, جو یدھ سے پیچھے نہیں ہٹتا اسے شورویر کہتے ہیں. کیا کہا, اور یہ بھی ایک بار سمے کو پراپت کرتا ہے تو اس سے گرتا نہیں ہے تو اس کو شورویر کہا. یہ سوچا ہی نہیں تھا, کتنی اس کی سیملی لگا دی, یدھ سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. جو یدھ سے پیچھے نہیں ہٹتا اسے شورویر کہتے ہیں, اور جو بہت سے شاستر پڑھ لیتا ہے اسے پنڈت کہتے ہیں. کنتو یہ سب کتھن ماتر ہے, واستو میں تو جو موکش کے کارن بھوت سمیکتو کو ملین نہیں کرتا اسے نرتیچار پالتا ہے. نرتیچار کا ارتھ کیا ہے ویریش بھائی جانتے ہیں؟ ہاں, یعنی اس میں کوئی بھی دوش نہیں لگے, ایسا نرتیچار, کوئی بھی اتیچار نہیں لگے, ایسا وہی دھنیہ ہے, وہی کرتارتھ ہے, وہی شورویر ہے, وہی پنڈت ہے, وہی منشیہ ہے. اس کے بنا یعنی سمیکتو کے بنا منشیہ پشو سمان ہے. ایسا کسی آچار نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہاں سوشیلا بھائی, منشیہ کو پشو کہا؟ हाँ कभी सही उत्तर है आपका। हाँ हाँ वो तो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। कहाँ? वो आखिर के परिशिष्ट में जो हाँ जो जो वो क्या बात बताई, आत्मा ही ज्ञान है। तो वो सबको ऐसा लगा कि ज्ञान ही की गुण आत्मा में है, बाकी कोई गुण नहीं है। तो फिर उसको समझाने के लिए वो लिखा
और
और 14 गाथाओं में पशु 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 करके अपने को डेकोरेट किया, यानी हमारे जैसे को। तो कह रहे हैं वह मनुष्य है उसके बिना, यानी सम्यक्त्व के मना पशु मनुष्य पशु समान है सम्यक्त्व की, ऐसा ऐसी महिमा कही गई है।
अतिचार में चारों लेना पड़ते, अतिचार अनाचार अलग है।
अनाचार हो तो सम्यक्त्व छूट जाता, और अतिचार है तो दोष लगता है, फिर उनको सम्यक्त्व चल जाता है।
देखो अभी बहुत स्थूल रूप से भी समझना है तो जिसको आप परिचित है, चल मल अगाढ़ दोष है तो ये अतिचार है। जैसे अभी अनुव्रत धारण करते हैं तो उसके दिग्व्रत है, यानी कुछ दिशा के नहीं जाना, देश व्रत है यानी इधर से उधर नहीं जाना। तो मान लो कि आपने नक्की किया कि मैं सायन माटुंगा से बाहर नहीं जाऊंगा, इतने में हमको आया जैसे जबलपुर से फोन आया, फिर तुमने अटेंड किया तो अतिचार लगा। तो तुम भले नहीं गए पर तुम खत भी लिखते हो यहां से कहीं वहां आउट ऑफ सायन माटुंगा, तो भी वो अतिचार में गिना जाएगा। टेलीफोन भी बात करो, कुछ भी करो, SMS भी भेजो तो उसमें आएगा, ईमेल भी आएगा आज की भाषा में, ये सारे कैसे हो गए? दिग्व्रत के अतिचार। और अनाचार यानी क्या? अरे कौन देखता है रात को जाएगा,
अनाचार यानी स्वच्छंद,
रात को जाके वापस आऊंगा यहां से दिल्ली जाके टबक, प्लेन में जाना प्लेन में आना, दो दो घंटे का काम, कोई समझेगा थोड़ी। तो ये अनाचार हो गया, यानी बिल्कुल विरुद्ध अपनी बिहेवियर करना। अतिचार यानी गलती से, जैसा मान लो कि आपने आलू प्याज आदि खाने का नहीं ऐसा नक्की किया, किसी के घर में बुलाया और वो आपने मुंह में डाला, उसमें प्याज निकला, तो वो आप खाना तो नहीं चाहते लेकिन वो अतिचार। अभी यहां अपने को बैठे बैठे सुबह गंध लेना पड़ता। सम्यक दर्शन का बल। केवली और सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते। इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ जी, हम और आप रागादि रूप परिणमित होते हैं, इसका अर्थ हमें केवल ज्ञान नहीं है और हम सिद्ध नहीं है। बिल्कुल बात समझना क्या कहते हैं। और ये तो हम अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा अन्य जो देव करके या ईश्वर परमेश्वर करके जिनको संबोधित किया जाता है वे रागादि रूप परिणमित हो रहे हैं, तो कहने वो केवली नहीं है, यानी वो भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान का हमने लक्षण क्या बांधा है कि जो वितरागी है और जो सर्वज्ञ है। तो जो पहले वितरागी होंगे बाद में सर्वज्ञ होते हैं, तो जो क्रोधादि रूप परिणमित होते हैं लेकिन वो अच्छे सब क्या है, अरे उनके शिष्यों को वो संकट आवे तो बचा लेते हैं, तो राग रहेंगे ना। ये एक एक वाक्य में कितनी बातें बैठी है। क्यों? केवड़ी और सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते और संसार अवस्था को नहीं चाहते, यह सम्यक दर्शन का ही बल समझना।
वो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं इच्छेंगे, हमें भी नहीं इच्छेंगे।
अभी लिखा
भगवान के लिए
ये आधुनिक हिंदी मोक्ष मार्ग अध्याय नौवा पृष्ठ 324 में ये कोटेशन दिए उन्होंने। अभी आगे की बात
कलर का जो है ना बीच में दिख रहा है, राइट साइड में, ये राइट साइड
इधर 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 10-5 है बहन, वो कवर डाला हुआ है ना वो दे दो
सामने है
ऊपर
जहाँ आप देख रहे थे।
आप मेरे तरफ देखो, उधर कवर डाला है, देखो बीच में एक, हाँ वो दे दो। जब तक मैं आगे को पढ़ लेता हूँ, इन्होंने कोटेशन दिया है, अब वहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं। ये भी उधर ही का है, पेज नंबर 324 सम्यक। हाँ जी हिंदी में ही नदी, सॉरी ज्ञानादि की हीन अधिकता होने पर भी तीर्यंच आदि यानी पशु आदि के और केवली तथा सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन को समान कहा है। उनके 24 उनके आत्म प्रतीति, प्रतीति का अर्थ श्रद्धा, एक ही प्रकार की होती है, किंतु स्व पर्याय की योग्यता की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के तीन भेद हो जाते हैं। यहाँ तो हमें जरा सा ऐसा समझना चाहिए,
रागादि रूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो ये श्रद्धा का बल जानना।
वही बात बताइए, सम्यक दर्शन का ही बल समझना चाहिए। पर आगे उसी के आगे है क्या, देखो ये तीन सम्यक दर्शन के भेद, ये 322 पृष्ठ पर है, ये हमारे पास जो पुस्तक है उसका 322 है।
सम्यक दर्शन के भेद को आगे चलते
बताए, पेज नंबर वही दिया। चलो देखो, यहाँ एक बात आप समझनी चाहिए कि जो औक्षमिक सम्यक होता है, प्रथमोक्षम सम्यक की बात कर रहा हूँ, औक्षमिक सम्यक जो है और जो क्षयिक सम्यक है और जो केवली भगवान का सम्यक है, उनका तो क्षयिक है, तो उसके क्वालिटी में कोई अंतर नहीं, वो जितना निर्मल है इतना इनका भी है, क्षयक्षम की बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं, क्या कहा, आत्म प्रतीति एक ही प्रकार की होती है, किसकी किसकी, केवली तथा सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन को समान था। ये किसके साथ तुलना हो रही है, कि तीरंज आदि पशु के, यानी तीरंज को भी कहो, नारकी को भी कहो, या मनुष्य को कहो, देव को कहो, ये सबके जो सम्यक तो होता है, आत्म प्रतीति कहो।
अब आगे स्व किसे माना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्व का सबका एक देश है, जो अपना स्व है उसी को स्व माना, आत्मा को ही स्व माना, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है उस मान्यता में, ये बात बताना चाहिए।
देखो, किंतु स्व पर्याय की योग्यता की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के तीन भेद हो जाते हैं, एक औक्षमिक सम्यक दर्शन, दूसरा क्षाक्षमिक सम्यक दर्शन, तीसरा क्षायिक सम्यक दर्शन। अभी औक्षमिक सम्यक दर्शन इसका भी अभी भेद बता रहे, उस दशा में यानी औक्षमिक सम्यक दर्शन की दशा में मिथ्यात्व कर्म के तथा अनंतानुबंधी कषाय के जड़ रचकन स्वयं उपशम रूप होते हैं, जैसे मैले पानी में से मैल नीचे बैठ जाता है, अथवा जैसे अग्नि राख से ढक जाती है, आत्मा के पुरुषार्थ से जीव प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट करता है, तब अपशोमिक सम्यक दर्शन ही होता है। ये नीचे फुटनोट में दिया हो, अनादि मिथ्या दृष्टि के अपशोमिक सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार ऐसी पांच प्रकृतियां उपशम रूप होती हैं, और सादी मिथ्या दृष्टि के अपशोमिक सम्यक दर्शन होने पर जिसके मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां सत्ता रूप होती है, उसे मिथ्यात्व की तीन और अनंतानुबंधी की चार ऐसे सात प्रकृतियां उपशम रूप होती है, और जिस सादी मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति ही सत्ता में होती है, उसके मिथ्यात्व की एक और अनंतानुबंधी की चार ऐसी पांच प्रकृतियां उपशम रूप होती है। बहुत आसान बताया है, या उन्होंने दो बातें बताई हैं कि जो औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करते हैं वो दो प्रकार के जीव बताए हैं। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी सत्ता में मिथ्यात्व कर्म जो है दर्शन मोहिनी कर्म, वो एक मिथ्यात्व रूप से ही उपलब्ध है उसके पास, और जो एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है वो तो अनादि मिथ्या दृष्टि होगा, तो औपशमिक सम्यक्त्व ही होगा। जब उसके समय तो होता है उसी समय ये मिथ्यात्व कर्म के तीन भेद हो जाते हैं और वो उसकी सत्ता में असंख्यात वर्षों तक वैसे रहते हैं, तो वह सादी मिथ्या दृष्टि है। वह सादी मिथ्या दृष्टि भी एक ऐसा टाइम आता है जिसको हम कहते हैं कि औपशमिक काल, वेदक काल नहीं, उपशम काल। उस काल में दोबारा मिथ्या सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, तो तीन टुकड़े और अनंतानुबंधी चार ऐसे सात को वो उपशमा सकता है, और डिटेल में जावे तो छह को भी उपशमाता है वगैरह वगैरह। अभी उसकी बात है, यहां तो नहीं की है और अपन भी नहीं करेंगे, लेकिन पांच सात और पांच छह और सात ऐसा भी शास्त्र में बात आती है। अभी यहां ऐसी बात है कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो बहुत काल तक असंख्यात वर्षों तक सम्यक तो ही प्राप्त नहीं करेगा, तो वो एज गुड एज अनादि मिथ्या दृष्टि जैसे उसके एक मिथ्यात्व कर्म ही रहता है, और वो दोबारा जब भी कभी सम्यक तो प्राप्त करेगा तो वह भी पांच कर्म प्रकृतियों को उपशमाएगा। एक कहने की बात है उपशमाएगा, वहां तो पहले ही बताया था कि वहां जो कोई परिणमन होता है वो पुद्गल का पुद्गल में यानी कर्म का कर्म में, और जीव का परिणाम ऐसा, उसी दोनों का समय एक है। इस पर किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछना हो, ये तो बात अपनी यहां बहुत बार हुई है। अब आगे, ये तो औपशमिक सम्यक दर्शन की बात करी, क्षौपशमिक सम्यक दर्शन इस दशा में मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व कर्म के रजगण आत्म प्रदेशों से पृथक होने पर उनका फल नहीं होता और सम्यक मोहिनी कर्म के रजकन उदय रूप होते हैं, तथा अनंतानुबंधी कषाय कर्म के रजकन विसंयोजन रूप होते हैं। इन नेसेसरीली ऐसा थोड़ी होता है,
हो सकते हैं,
यानी अनंतानुबंधी के रजकन विसंयोजन रूप होना ही चाहिए ऐसा नहीं, हो भी सकते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन इस दशा
समझ में
बोलो
लिखा ना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के रजकण आत्म प्रदेश होती छूटा पड़ता तेम थोड़ा होता है, हम उसका समझ में यानी ये निकल तो जा रहे परमाणु, मिथ्यात्व के परमाणु और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु अभी उदय में आकर निकल जाएंगे, पर स्वरूप से उदय में नहीं आए तो क्या होगा, समय प्रकृति रूप टर्न होकर उदय में आएगी एक समय के लिए, तो वो छूट कर जा रहे हैं पर फल में तो क्या होगा, तो फल किस रूप से आएगा, समय प्रकृति रूप से उसका फल मिलेगा, परमाणु फिर जाए फिर के निकल जा रहे हैं वो अभी सत्ता में नहीं पड़े रहेंगे, परंतु उसका अपने रूप से फल नहीं मिलेगा, एक समय के लिए टर्न होकर उदय में आएंगे और सम्यक मोहिनी के रजकन उदय रूपे हो, उदय यानी उसका अपना उदय चल रहा है। और बाकी दो है वो समय प्रकृति रूप टर्न होकर उदय में आगे
क्षायिक सम्यक दर्शन। इस दशा में मिथ्यात्व प्रकृति के तीनों उपविभाग के, ये तीनों उपविभाग क्या है नितिन भाई? अरे वाह, रजगण आत्म प्रदेश से सर्वथा हट जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की सातों प्रकृतियों का क्षय हुआ कहलाता है। ये उन्होंने तीन प्रकार के सम्यक दर्शन के भेद बताए। सम्यक दर्शन के अन्य प्रकार से भेद, सभी सम्यक दृष्टि जीवों के आत्मा की तत्व की प्रतीति एक सी होती है, तथापि चारित्र दशा की अपेक्षा से उनके दो भेद हो जाते हैं कि उनसे तो वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। वास्तव में ये जो जिसे वीतराग सम्यक तो है उसके साथ जो राग बाकी है उसको उपचार से सराग सम्यक दर्शन कहने में आता है। दर्शन सम्यक दर्शन कोई सराग रूप होता ही नहीं, जिसको हम व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा में स्थिर होता है तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, तब राग के साथ बुद्धि पूर्वक संबंध नहीं होता। जीव की इस दशा को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। देखो एक बात, यहाँ एक बात क्लीनली अपने ख्याल में आनी चाहिए। यहाँ क्या बताते हैं कि जब आत्मा का अनुभव हो रहा है कहो या आत्मा में स्थिर होता है तब निर्विकल्प दशा होती है, और क्या बताया, राग के साथ बुद्धि पूर्वक संबंध नहीं है, यानी इसका अर्थ उसका अभी राग द्वेष के परिणमन चल रहा है, अबुद्धिपूर्वक है। अगर ऐसा हम नहीं मानते हैं तो चौथे गुणस्थान होते ही उस जीव के बंध होना बंद हो जावे, क्योंकि बंध तो आश्रय पूर्वक होंगे और वहां राग द्वेष अबुद्धिपूर्वक चल ही रहे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कोमा में कोई जीव जाता है तो उसको कर्म बंध होगा कि नहीं होगा, जानता होगा कि नहीं, वो डॉक्टर आता है इधर हथौड़ा मारता है इधर ऐसे ऐसे कुछ करता है तो रिस्पांस नहीं देता है तो वो जानता है कि नहीं? अरे जानता है, कैसा नक्की करेंगे भाई? जानता है कि नहीं? हाँ, ज्ञान है, गुण है, तो ज्ञान गुण का जानन रूप कार्य कहो पर्याय कहो निरंतर चले ऐसी वस्तु व्यवस्था है। तुम मानो या मत मानो उससे क्या लेना देना है,
वो क्या जान रहा है उसके बाद नहीं। हाँ। जान रहा
है। हम तो इतना ही दिखते कि जरा मारा तो ऐसा करे, हाँ जानते जानते ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात बता दे। क्या कहा देखो, जब सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा में स्थिर होता है तब उसके निर्विकल्प दशा होती है, यानी कोई विकल्प नहीं चल रहे हैं राग द्वेष के परिणाम, तो कहते तब राग के साथ बुद्धिपूर्वक संबंध नहीं होता, इसका अर्थ है कि अबुद्धिपूर्वक संबंध वहां चल रहे हैं। जीव की इस दशा को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है, और जब सम्यक दृष्टि जीव अपने में स्थिर नहीं रह सकता तब राग में उसका अनित्य संबंध होता है। ये राग में उसका अनित्य संबंध होता है इसका अर्थ क्या है सुशीला बेन? अच्छा हाँ, नहीं नहीं देखो देखो, पहले मेरा ये प्रश्न आप ही को है, कोई बोले नहीं प्लीज, ये अनित्य तादाद में संबंध किसका किसके साथ होता है? द्रव्य का पर्याय के साथ, कहो या पर्याय का द्रव्य के साथ। तो ये राग का कैसा है कह रहे हैं, ये नहीं रह सकता है, राग में उसका अनित्य तादाद में, यानी उसका राग का परिणाम चल रहा है, फिर भी कैसा है, हर समय नया राग, हर समय नया राग। इसलिए उस दशा को सराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। ध्यान रहे कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा कभी नहीं मानता कि शुभराग से धर्म होता है या धर्म में सहायता होती है। किसकी? शुभराग की।
शुद्ध
परिणति
को भाई साहब शुद्ध परिणति को सराग नहीं कह रहे। जो राग देश के विकल्प चल रहे हैं उसको
इतना राग का अंश है ना,
वहाँ
तभी तो उसके उसी के शुभ उपयोग को कहा, मिथ्या दृष्टि के शुभ उपयोग को नहीं कहा। वितराग आगे वितराग का लिया ना, वितराग समय दर्शन, समय दर्शन कह दिया है और सराग समय दर्शन कह दिया है। तो सराग यानी यहाँ बुद्धिपूर्वक का राग है और वहाँ बुद्धिपूर्वक का राग नहीं था।
देखो देखो आपका ये कहना है कि क्या यहाँ शुद्ध परिणति को सराग सम्यक दर्शन कहा है, तो बात ऐसी है यहाँ तो जैसा हमने ये नक्की किया है कि जीव चौथे गुणस्थान में स्वरूप में गुप्त है यानी सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन चल रहा है, उस समय उसके राग चल रहा है। हाँ तो उस अबुद्धिपूर्वक राग को वितराग सम्यक दर्शन कहेंगे क्या? नहीं, ये जैसा प्रश्न है ना वैसा आपका उल्टा प्रश्न है। वहां तो शुद्ध उपयोग है उसको कह रहे हैं और यहाँ पे जो शुभ उपयोग है उसको सराग सम्यक दर्शन कह रहे हैं। मेरी बात समझ में नहीं आपको?
सम्यक दर्शन के साथ वाला जो शुभ उपयोग है वो सराग सम्यक है, वो सराग सम्यक।
हाँ क्योंकि सम्यक दर्शन देखो स्वरूप में गुप्त है जब तक ही उसका सम्यक तो है ऐसा है, और सब स्वरूप से बाहर आए तो उसका सम्यक तो छूट जाता है, तब कहेंगे आप कहेंगे अरे नहीं नहीं उनकी शुद्ध परिणति चालू है, बराबर है। पर वह शुद्ध परिणति को सराग सम्यक दर्शन नहीं कहा है, उस साथ में रहने वाला जो राग चल रहा है उसको सराग सम्यक दर्शन, इसलिए मैंने आपको उल्टा प्रश्न पूछा कि अबुद्धिपूर्वक राग को आप निश्चय सम्यक दर्शन या वितराग सम्यक दर्शन कहोगे क्या? अभी भी हमारा तुम्हारा चल रहा है भैया, कौन सा अबुद्धिपूर्वक राग? अभी नहीं मानते हो तो सो जाते हो, जब तक तो चलेगा कि नहीं? तो सोते हो तब सम्यक दृष्टि, जागते हो तो पीछे तो वहां शुद्ध परिणति है, पर उसकी बात यहां पर नहीं ली है। आगे सराग सम्यक दृष्टि के प्रशमादि भाव। देखो यहाँ पर एक विशेषता है कि रामजी भाई ने जहां वहां कोटेशन दिए हैं वो बड़े बड़े शास्त्रों के दिए हैं। यहाँ पर अभी जो हमने ये सारी सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन की बात करी है, वो तो समय सार जयसेनाचार गाथा 166 में डिस्कशन किया है। 12 सराग सम्यक दृष्टि के प्रशमादि भाव। सम्यक दृष्टि के राग के साथ संबंध होता है तब चार प्रकार के शुभ भाव होते हैं। तो कहते हैं प्रशम, शम यानी थोड़ा सा ठंडा भाव परिणाम, प्र यानी विशेष रूप से ठंडे परिणाम यानी राग तीव्र नहीं होना ऐसे। संवेग यानी उनको संसार के प्रति, अभी आएगी वो बात नीचे लिखी है, अनुकंपा और आस्तिक्य। ये प्रशम किसको कहना? क्रोध मान माया लोभ संबंधी राग द्वेषादि की मंदता। इसको प्रशम कहेंगे। संवेग अर्थात क्या कहते हैं? संसार अर्थात विकारी भाव का भय। क्योंकि संसार कब है, संसार किस लिए हो रहे हैं, ये राग द्वेष के जो परिणाम चल रहे हैं उसके लिए जो बंद हो रहा है, उसके लिए विकारी भाव का भय रहता है ऐसे जीवन को। अनुकंपा, स्वयं और पर सर्व प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव, केवल पर जीव जो है, प्राणी मात्र जो है, प्राणी यानी अतिरिंच आदि जो हम कहेंगे उनके प्रति दया का भाव नहीं। तो यहां दो बातें बताएं, स्व के और पर के, ऐसे सर्व प्राणियों पर दया का प्रादुर्भाव, यानी हम दूसरों की दया पालने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं, ये बात बताना चाहते हैं। यहां दोनों की बात ली है। हाँ अरविंद भाई कुछ कहना है। स्वयं और पर ये क्या है, सब प्राणी है, इनके ऊपर दया का प्रादुर्भाव, यानी उनके प्रति दया के परिणाम की उत्पत्ति होना, यानी बार बार मेरा उपयोग बाहर क्यों जा रहा है इसके लिए खेद वर्त है, वो स्वरूप में एकाग्र होने की वो कोशिश करेगा। ये तो पहले तो सारे भाव चल रहे हैं ना बाह्य, इसलिए वो सराग सम्यक दृष्टि के भाव की बात करें। और आस्तिक तो जीवादि तत्वों का जैसा अस्तित्व है वैसा ही आगम और युक्ति से मानना। अभी यहां हम जीवादि तत्वों की बात चल रही है, तो आस्तिक के भाव यानी ये ऐसा ही है जैसा आगम में बताया है। सराग सम्यक दृष्टि को इन चार प्रकार का राग होता है, इसलिए इन चार भावों को उपचार से सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है। जीव के सम्यक दर्शन,
सम्यक दृष्टि को जो भक्ति या ये जो ये सब भाव आते हैं,
हाँ,
इस भाव को क्यों नहीं लिया गया?
हाँ, आपका पूछना ऐसा है कि सम्यक दृष्टि को देवगुरु शास्त्र के प्रति भक्ति का राग आता है, पूजन आदि का राग आता है, विधान आदि करने राग की मंदता आई ना,
वही राग
संवेग में भी आता है। प्रश्न का भय और धर्मानुराग दोनों उसमें है। संवेग के दो प्रकार से लक्षण ये आता है।
प्रशम में आ गई ना वो बात, मेरे हिसाब से यहाँ के डेफिनेशन के अनुसार विकारी भाव का भय ये तो नहीं होगा। अभी आपने जो प्रश्न पूछा उसमें वो तो भक्ति का भाव चल रहा है, वो राग की मंदता होगी तो ही जीव देव गुरु शास्त्र के प्रति अपना अहोभाव जाग प्रदर्शित करेगा। देखो भाई ये भी बात ध्यान रखना हो, यहाँ पूजा ही करनी चाहिए ऐसे कुछ नहीं। आप मान लो कहीं मंदिर बन रहा है या कहीं कुछ और बातें चल रही हैं, तो वहां हम दान देते हैं, तो दान वो कार्य आगे बढ़े इसके लिए देना अलग बात है, और मेरा नाम इधर आप छपाओगे तो ही मैं आपको कितना चाहिए 10 लाख 15 लाख दिया, मेरा नाम मेरा है नहीं, जो हमारे पिताजी का माताजी का जो कुछ होगा, तो वो ऐसा बनना उसको नहीं होगा, वो तो तीव्र राग है भाई। यहाँ तो राग की मंदता है और ये सम्यक दृष्टि की होगी, ये आपको कंपैरेटिवली जरा थोड़ा सा बताए। वैसे हर चीज में लेना जो कोई शुभ परिणाम है, हम तो यहाँ देखेंगे देवगुरु शास्त्र के बारे में ही बात देखेंगे, तो उसके प्रति सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम निश्चित रूप से मंदता रूप से ही रहेंगे, नहीं तो ये बात सुनने को भी नहीं कोई राजी होगा। मंद परिणाम जब तक नहीं होते हैं तो देव के दर्शन करने के, पूजन करने के, या हमें जिसको हम कहेंगे कि कोई उपवास आदि के परिणाम भी नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, सब सभी बातें आगे।
एक्चुअली हम चार बताए, इसे आठ भी बताते हैं, उसमें वात्सल्य भी है,
प्रभावना भी है,
उसमें ये सारे आते हैं,
इसी के भेद है वो। सराग मैं फिर से दोबारा पढ़ रहा हूँ, यहाँ तक आ गए, नीचे आस्तिक के नीचे पढ़ना रहेगा। सराग सम्यक दृष्टि को इन चार प्रकार का राग होता है, इसलिए इन चार भावों को उपचार से सम्यक दर्शन का लक्षण कहा जाता है। जीव के सम्यक दर्शन न हो तो वे शुभ भाव क्या है, प्रशमाभास, ये प्रशम कहा ना, तो प्रशमाभास, संवेगाभास, अनुकंपाभास और अस्तिक्याभास ऐसा समझना चाहिए। यानी सम्यक दर्शन न हो तो मैंने अभी जो कहा कि मेरा नाम छापोगे, ये आपको कभी मालूम नहीं, गए क्या नहीं, शिखर जी कभी गए क्या, हाँ गए, वहां 20 पंथी कोठी में जाना कि मैं जो बात बताता हूँ दिखेगा आपको, वहां 1 रुपया दिया ना तो एक पगतिया के पूरा वो क्या बोलते हैं संगमरमर का पत्थर लगा, वो टाइम की बात है, आज की नहीं, 1 रुपया देगा तो उसका नाम छपता था और वो लोग उधर छपा के लेते थे कि ये दिनेश भाई से सप्रेम भेंट रुपया 1, तो अपना नाम उधर लिखा था, हम तुम क्या करते हैं ऐसा क्या ठप पैर रखी जाते नाम, ये प्रशमा बास हो गया ख्याल में, क्या कहते हैं देखो अस्तिक क्या बात है, ऐसा समझना चाहिए। प्रशमादिक सम्यक दर्शन के यथार्थ निश्चय लक्षण नहीं है, उसका यथार्थ लक्षण अपने शुद्धात्मा की प्रतीति है, ये वास्तविक सम्यक दर्शन है, ये उसका लक्षण है। अभी सम्यक दर्शन का विषय लक्ष्य तथा स्वरूप, सम्यक दृष्टि अपने को आत्मा, अपने आत्मा को कैसा मानता है, उत्तर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि अपने आत्मा को परमार्थ यानी यथार्थतः निश्चय से त्रिकाल शुद्ध ध्रुव अखंड चैतन्य स्वरूप मानता है। यानी एक काल की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं त्रिकाल अनादि अनंत हूँ, शुद्ध हूँ स्वभाव से तो मैं शुद्ध ही हूँ, ध्रुव यानी अचल हूँ और अखंड हूँ, खंड खंड रूप नहीं हूँ, और चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ ऐसा मानता है। उस समय जीव की विकारी अवस्था तो होती है, सो उसका क्या, विकारी अवस्था सम्यक ज्ञान का विषय है, ये क्या कहना चाहते समझ में आया। देखो श्रद्धा जो है वो सिर्फ आत्मा को ही उसको उधर ध्यान रखेगी, यानी उसका कंसंट्रेशन स्वभाव पर है, लेकिन ज्ञान क्या है,
श्रद्धा में उसका स्वपना किसी कंसंट्रेशन ज्ञान में लगेगा,
सॉरी
श्रद्धा में स्वपना किसमें स्थापित किया है, तो शुद्धात्मा
अपने में,
शुद्धात्मा ज्ञान तो सबको जानेगा, पर्याय को भी जानता है, शुद्धात्मा भी सबको जानेगा, तो जो पर्याय में जो उसके शुभ राग या जो कुछ भी कान हो रहे उसको भी जान रहा है, तो सम्य दृष्टि का ज्ञान है, इसलिए उसको सम्य ज्ञान कहते हैं, इसलिए कहते हैं विकारी अवस्था सम्य ज्ञान में विषय छे। अपेक्षा लगाओ तो जान बिल्कुल, परंतु अभी तो वो अपनी अवस्था है ना उसकी, तो उसको भी जान ले।
देखो ज्ञान सबको जानेगा,
ज्ञान की अपेक्षा लगाए तो ज्ञान के लिए वो करो,
उसी ज्ञान में तो सभी तो चलता है, सभी जो है ना
वो तो ज्ञान तो सबको जानता है, श्रद्धा मात्र स्व को स्वीकार करती है और ज्ञान सबको जानता है।
यहाँ बात तो ज्ञान किसको किसको विषय बनाती है उसकी बात चल रही है, तो कहती है जो विकारी अवस्था यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो सम्यक दृष्टि जीव के जो सम्यक ज्ञान है वो किसको जानेगा, तो कहते विकारी अवस्था उसका भी उसका विषय है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि जानता तो है, किंतु सम्यक दृष्टि का आश्रय यानी वो अवस्था पर्याय भेद पर नहीं होता। आश्रय पर नहीं होता, क्योंकि अवस्था के आश्रय से, अवस्था यानी पर्याय के आश्रय से जीव के राग होता है और ध्रुव स्वरूप के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। देखो मैं यही बात बताना चाहता था कि श्रद्धा जो है वो अपना अपनापन किसी न किसी में स्थापित करती है, तो अपने में अपनापन स्थापित किया तो सम्यक दर्शन हुआ और पर में अपनापन स्थापित किया तो मिथ्या दर्शन हुआ। लेकिन ज्ञान जो है वो स्व को भी जानेगा और पर को भी जानेगा, उसको जानने के लिए कोई मतलब मर्यादा नहीं है। अब जैसा जिसके ज्ञान का उघाड़ है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से हम सोचेंगे तो ये बात जल्दी ख्याल में आती है। केवल ज्ञान ही तो स्व को तो जान ही रहे, स्व को जानते हुए ही उनको यानी जिसको हम कहेंगे स्व में कॉन्सेंट्रेट होते हुए भी, स्व में स्थिरता होते होते ही उनके केवल ज्ञान हुआ है, और उस केवल ज्ञान में तो पूरा लोकालोक झलकता है। तो लोकालोक में वो स्वयं आए कि नहीं, जो अनंत द्रव्य है वो अनंत द्रव्य में अपना नंबर है कि नहीं स्वयं का, तो अपने को भी परिपूर्णतः जानते हैं। और कल दो दिन पहले बात निकली तन्मय होकर जानते हैं, तत्मय होकर जानते हैं और अन्य को अतत्मय होकर जान रहे हैं। नहीं समझ, नारकी जीव जो है सातवें नरक के, उनको जो कोई वेदना हो रही है तो वेदना केवली के ज्ञान के विषय होगा कि नहीं, तो उनको कितना दुख होता होगा। ये तन्मय अतन्मय बना ख्याल में है ना, वो जाने जरूर पर उस रूप होकर अतत्मय है वे। अब मुझे लगता है इधर ही रुकेंगे क्योंकि आगे की बात और लंबी हो जाएगी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मत कनमो सदा बेत हो।